आत्म सुख एक ऐसा अद्भुत सुख है कि उसका सचमुच बयान किया नहीं जाता। कितना भी बयान करो फिर भी वो ला बयान, जिसको बोध हो गया वो हमें बोध कराने के लिए बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, बहुत हो गया, फिर जरा सोचेंगे कि अभी उसके विषय में कुछ बोला नहीं। वो ऐसा सुख है, उस सुख के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतरात्मा की तरफ हमारी दृष्टि हो। मन में और बुद्धि में ऐसे कुसंस्कार पड़ गए हैं कि किसी का कुछ देखकर हम चाहते हैं कि ऐसा बने तब सुखी होंगे। ये एक गलती हो गई हम लोगों की। ए महाराज देखो ऐसी फर्स्ट क्लास कुटिया में रहते हैं, आम के नीचे रहते हैं, आम वाले बाबा इनका नाम पड़ा, पुष्कर में रहते हैं, आम वाले बाबा जैसे जिए तब मजा आएगा, आसाराम जैसे जिए तब मजा आएगा। ये आप कहां से बता रहे
हैं?
यूपी से नरवर एक स्थान है, वहां से पधारे। अथवा फलाना साहब ऐसा जिए, बाहर का क्रिया की सुविधा देखकर आप उसमें ढलेंगे ना, तो वहां जब पहुंचेंगे ना तो नहीं मजा आएगा। लेकिन वो बाहर का उनका कितना पद हो, चाहे कितनी प्रतिष्ठा हो, या निर्धनता हो या धन हो, ये कोई महत्व की चीज नहीं है। लेकिन महत्व की चीज है कि महाराज एक छोटी बात समझ ले कि किसी का धन, किसी का रूप, किसी की सत्ता, किसी का लावण्य, किसी का चेहरा या किसी के बहू बेटियां जैसे जितने हैं वैसे के वैसे दूसरे आदमी के ऐसे उतने नहीं हो सकते। भोग पदार्थ में जो एक व्यक्ति को है वैसे का वैसा, उतने का उतना दूसरे को नहीं हो सकता है। जय जय। क्रिया के सुख में जो सुविधाएं एक व्यक्ति को है वैसे की वैसी, उतनी की उतनी दूसरे को नहीं होती। लेकिन आत्म सुख तो जो तुम्हारे पास आत्मा है, वही बुद्ध के पास, वही कबीर के पास, वही नानक के पास, और वही वशिष्ठ जी के पास, और वही आत्मा श्री कृष्ण का है जो तुम्हारा है। तुम जान लो तो कृष्ण और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं, केवल आकृति का फर्क होगा, वास्तविक जो एक के एक। अब कहां कृष्ण तत्व का जीवन, कहां शिव तत्व का जीवन, कहां ब्रह्मा जी तत्व का जीवन, और कहां आज हमारे पद और प्रतिष्ठाओं का जीवन। हम लोग घाटे में हैं, लेकिन जब तक आदमी की वर्तमान स्थिति उसको दयनीय नहीं लगती है, तुच्छ नहीं लगती है, अल्प नहीं लगती है, तब तक उसके मन में बड़ी ऊंची स्थिति पाने का उत्साह नहीं आता, उसके बुद्धि में निर्णय नहीं होता है, और उसके जीवन में यात्रा करने का कोई उमंग नहीं उठता है। तो आज की जो हमारी स्थिति है ना, क्षण क्षण में हम मर रहे हैं और मौत के करीब जा रहे हैं, इस पर जरा गौर करें। और जिन पदार्थों को, जिन पदों को हम पकड़ना चाहते, थामना चाहते, अरे जन्म हमारे हाथ की बात नहीं और मौत हमारे हाथ की बात नहीं, तो मध्य हमारे हाथ में कैसे? पुल का एक छेड़ा तुम्हारा जमीन पर नहीं है और दूसरा छेड़ा भी जमीन पर नहीं है, तो बीच का पुल कैसे जमीन पर टिकेगा? ऐसे जीवन का एक छोर हमारे हाथ में नहीं जिसको हम जीवन समझते हैं। जन्म एक छोर है, आप अपनी मर्जी से जन्मे हैं? अपनी मर्जी से दुखी हो रहे हैं? अपनी मर्जी से काले हो रहे हैं? अपनी मर्जी से बीमार हो रहे हैं? अपनी मर्जी से छापरा सफेद हो रहा है? नहीं। जय जय। तो इस देह पर तुम्हारी मर्जी नहीं चल रही है, तो ये देह अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ और अपनी मर्जी के अनुसार चलता नहीं, और अपनी मर्जी के अनुसार इसका सब कुछ होता नहीं। जीवन में कुछ कुछ तो आपके संकल्प फलते हैं और कुछ नहीं फलते हैं। जीवन की, इस बाह्य जीवन की यही हालत है क्रिया की, कि कुछ पाया जाता है, कुछ खोया जाता है, कुछ कमाया जाता है, कुछ खर्चा जाता है, कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है, कुछ सीखा जाता है, कुछ सिखाया जाता है। ऐसे करते हुए जीवन डिम डिमाते यात्रा पूरी करता है। लेकिन असली जीवन तब शुरू होता है कि जो कुछ तुमने पाया है वो तुम्हारा नहीं है, जिसने दिया है उसका है। जयराम जी की कहना पड़ेगा। जो कुछ पाया गया है वो तुम्हारा नहीं है, क्योंकि देने वाला ऐसी तरकीब से देता है कि लेने वाला समझता है मेरा है। जे तमने मळ्યું છે એ ભૈલા તમારું નથી, દેવાવાળાએ એ ઢંગથી દીધું છે કે આપણે સમજે છે કે મારું છે। તો જો તુમ્હારા નહીં હૈ जिसने दिया उसका है। तो जिसने दिया है उसका है, तो उसका अगर ठीक से उपयोग करते हो तो वो उससे अनंत गुनी प्रसन्नता तुमको देगा। मैंने सूरत के साधक को सुनाई थी ये कथा कि एक सम्राट अपने तीन बेटों को बुलाकर कहने लगा कि बेटा ये एक एक बोरा फूलों के बीज हैं, मैं तुम्हें दिए जाता हूं और मैं यात्रा करके 2-2.5 साल के बाद लौटूंगा। इन्हें सुरक्षित रखना, संभाल कर रखना। ये केवल एक बोरा बीज नहीं है, इस पर तुम्हारी भावी की नींव है। जो ठीक से संभालेगा वही इस मेरे पूरे राज्य का अधिकारी होगा। बाप ने एक एक बोरा फूल के बीज दिए, रवाना हुए। एक लड़के ने सोचा कि बाप 2.5 साल के बाद आएंगे, संभाल के रखना होगा क्योंकि इसके पीछे पूरी राज्य की लेन देन है, इस बोरे पर ही मेरी तकदीर लिखी है। उसने फर्स्ट क्लास तिजोरी बनवाई, गुप्त खाने सुप्त खाने जो भी कुछ हो सब बनाकर फिट एकदम अच्छी तरह से बीजों को भर दिया और 2 चाबी लगा दी और चाबी भी एक सुरक्षित जगह पर रख दी और निश्चिंत हो गया। दूसरे ने सोचा कि बीज संभाल के रखना संभव नहीं कि 2.5 साल में उन्हें घुन लग जाए, सड़ जाए, बदल जाए, बेच दिए जाए और जब पिताजी आएंगे तो उन पैसों के खरीद लेंगे। उसने बेच दिए। तीसरे ने सोचा कि ताला कुंजी में भी सुरक्षित नहीं हो सकते और बेचें तो उस समय ऐसे कैसे मिले न मिले, संभव नहीं। तीसरे ने क्या करा कि महाराज वो खेत जोतवा के और बीज बो दिए गए, बो दिए तो फूल हुए, फुलवाड़ी हुई, महल के चारों तरफ फुलवाड़ी फुलवाड़ी सुहावना सुंदर, लोगों को रोजी मिली और बीज तो बढ़ते गए, कई बोरों के बोरे होते गए, बीज भी बिकते गए, फूल भी बिकते गए, सुहासे भी मिलते गए, जीवन चलता गया। पिताजी जब आए तो पहले बेटे को कहा कहाँ है वो बोरा बीज का, गया बोले चलो, ताला खोला तो कचरा निकला, जंतु निकले तिजोरी में से सड़ा हुआ, बस खातर खातर भी कुछ नहीं, ऐसा बदबू तोबा तोबा पूरा रूम गंदा बाहर निकल आया। दूसरे से पूछा बोले अभी खरीद के आता हूँ कि ठहरो। अब तीसरे से पूछा कि तेरे बीज कहाँ हैं कि चलो दिखाता हूँ। महल की चोटी पर ले गए कि बोलो ये सारी जो फुलवाड़ी है आपके बीजों की है और गोदाम जो भरा हुआ है वो भी बीजों का है। ये जो गोदाम भरा हुआ है वो भी बीजों का भरा हुआ है, फूल के बीज हैं उसमें, आप जो दे गए थे वही के वही हैं, उससे अनंत गुने हो गए। बाप ने बेटे को छाती से लगाया कि ऐसे ही तू मेरे राज्य को बढ़ाएगा, वो तो संभाल के सड़ा देगा, शोषण करके प्रजा को खोखला कर देगा और दूसरा प्रजा को गिरे रख देगा, बेच देगा, लेकिन तू जो है प्रजा का विकास करेगा, पालन पोषण करेगा। ऐसे ही हम, ये शरीर भी हमारी प्रजा है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण मन और बुद्धि, इनको अगर व्यक्तिगत सुख में रखते हैं तो ये सड़ जाता है, आलसू हो जाता है, प्रमादु हो जाता है, रोगी हो जाता है और पराश्रित हो जाता है। और इसको अगर किसी स्वर्ग आदि के लालच में इस शरीर को कर्मकांड में अगर बेचते हैं तो भी वो मजा नहीं आती, लेकिन शरीर जिसने दिया है और जहां से आया उसी के लिए अगर लगा दिया जाए, बीज जहां से आया वहीं लगा दिया तो अनंत हो ही गया, ऐसे ये देह जहां से आया है उस विदेही के लिए लगा दिया तो अनंत सामर्थ्य के द्वार खुल जाते हैं। एकदम सीधा गणित है। व्यापारी लोगों को तो एकदम करना चाहिए क्योंकि नफा नो धंधो पहलो करो, जो ये खरो व्यापारी छे। सिया राम राम गाए जा, सिया राम राम हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम तू प्रीति को बढ़ाए जा, तू प्रीति को बंदगी बढ़ाए जा, तू पार लगाए जा, तेरी नैया पार। आपका तन उस परमात्मा का है, तुम्हारा मन उसी का है, उसी को दे दो, तुम्हारी बुद्धि उसी की है, उसी को अर्पित हो। आएगा।